بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله لقد كرمنا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. انسانوں کا دوسری مخلوقات سے امتیاز بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، اسے ہم نے خشکی اور تری میں سیر کرائی، پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا اور تمام مخلوقات سے اسے افضل. عزیزو، پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ فضیلت اور یہ برتری اجباری نہیں، یہ فضیلت اور برتری اللہ نے ہمیں صلاحیتوں کی شکل میں عطا کی ہے. یعنی ہمارے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے کو تمام مخلوقات سے افضل اور برتر بنا سکتے ہیں، اور چاہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے جانور جیسے بلکہ جانور سے بھی بدتر بن جائے. وہی قرآن جو کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو سب پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اولائک کل انعام بل ہم اول، یہ تو جانور جیسے ہیں، کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو جانور جیسے ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر. یہ فضیلت، یہ اشرف المخلوقات ہونا اور اس درجے پر پہنچنا ہر انسان کی فطری خواہش ہے. انسان فطری طور پر اس منزل کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کر لیتا ہے، کسی بھی مقام تک پہنچ جائے، کتنی ہی دولت اس کے پاس اکٹھا ہو جائے، پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہو پاتا، کیونکہ اسے اس کا گمشدہ نہیں ملا. وہ منزل کمال جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے، جسے اس نے کھو دیا ہے. اس کو احساس ہے کہ وہ کیا ہے، کچھ تو جانتے بھی نہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن ایک جستجو ہے، ایک تلاش ہے، ایک تڑپ ہے. چونکہ واقفیت نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے حاصل کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ نہیں تھا. ان فضیلتوں کو حاصل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اسے اس راستے سے حاصل کریں جو فضیلت دینے والے نے مقرر کیا ہے. جب تک اس راستے سے حاصل نہ کریں گے اس وقت تک وہ فضیلت ملنا ناممکن ہے. انسان بھٹکتا رہے گا، پریشان رہے گا، جستجو کرتا رہے گا، لیکن چونکہ راستہ غلط اختیار کیا ہے اس لیے کبھی بھی منزل مقصود تک پہنچ نہ سکے گا. چونکہ چیز بڑی قیمتی ہے، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی ہی نقلی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ جاتی ہیں. جن چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے وہ اسے کوئی جو ہے وہ نقلی بنا नहीं करता। नकली चीजें तो वही बनती हैं जिनकी तलब होती है, जिनकी ख्वाहिश होती है। ज्यादा हम देखते हैं कि उस मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए जाने कितने रास्ते बन चुके, कितने बन रहे हैं, कितने आइंदा बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये वो रास्ता नहीं है जिसे बनाने वाले ने मुकर्रर किया था। बनाने वाले ने जो रास्ता मुकर्रर किया है वो है अहले बैत का रास्ता। सिर्फ और सिर्फ अहले बैत ही का वो रास्ता है जिसे अपना के वहां तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा परवरदिगार ने जब मोहब्बत अहले बैत को फर्ज किया और इस शक्ल में कहा कि कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे हबीब कह दीजिए कि हमें अजर रिसालत सिवाय अहले बैत की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फिर इस तवहम को भी दूर कर दिया कि ये मोहब्बत अहले बैत के फायदे के लिए नहीं है, मोहब्बत तुम्हारे फायदे के लिए। कुल मा असअलतुकुम अलैहि मिन अजर फहुवा लकुम, जो कुछ भी हमने तुमसे मोहब्बत अहले बैत की शक्ल में मांगा है ये अहले बैत के फायदे के लिए नहीं, वो तुम्हारे फायदे के लिए है। और फिर फायदे को तीसरी आयत के परवरदिगार यूं वादे करता है, हर शख्स से हम मोहब्बत के तलबगार नहीं है। हम तो मोहब्बत अहले बैत उन्हीं लोगों से मांग रहे हैं जो राह परवरदिगार पर चलना चाहते हैं। तो ये अहले बैत नहीं है, ये राह परवरदिगार है। मोहब्बत अहले बैत की शक्ल में तुम्हें महदाह अहले बैत पर चलने की जमानत फराहम कर रहे हैं। इस आवाज को है कि मोहम्मद वहां तक अगर रसाई हासिल हो सकती है तो अहले बैत के जरिए, अहले बैत ही के एक फर्द इमाम जाफर सादिक ने हमें वो रास्ता बताया है, वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते पर चल के हम सफल मखलूकात बन सकते हैं, जिस रास्ते पर चल के हम फजीलत इंसानी का ताज अपने सर पर सजा सकते। कल मैंने हदीस की तरफ इशारा किया था कि इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम अपने खास सहाबी महरम असरार अब्दुल्लाह इब्ने जुंदब को खिताब करके कहते हैं, ये अब्दुल्लाह इब्ने जुंदब ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, होशियार रहने की जरूरत है। किसी भी मंजिल पर पहुंच करके मुतमइन न हो जाना कि अब तो हम पहुंच गए, क्योंकि अक्सर होता यही है, हम अगर पस्ती की तरफ चले जाते हैं। बहुत से लोगों को देखा गया है कि निकले लोग तो ठीक ठाक रास्ते पर चल रहे थे, अच्छे खासे थे, कुछ दिनों के बाद जब देखते हैं तो उनके अंदर 180 डिग्री तब्दीली आ चुकी है। कल का मुत्तकी और परहेजगार आज का गुनहगार नजर आ रहा है। वजह यह है कि इंसान के अंदर एक चीज जो पाई जाती है वो काहिली और ये जो है सुस्ती का जज्बा है। इंसान ये समझता है कि हम एक मकाम पर पहुंच गए हैं, अब हमें मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अजीजो, इंसान जितना आगे बढ़ता जाता है उतने ही गिरने का खतरा भी बढ़ता है। जो लोग पहाड़ों के सैर करते हैं कोहनवर्दी करते हैं, कुछ वो होते हैं मीटर दो मीटर चलने के बाद गिर जाते हैं, थोड़ी बहुत चोट आती है। लेकिन जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना ही खतरा बढ़ता जाता है, उतनी ही एहतियात में इजाफा होता जाता है। क्योंकि अगर वहां से गिरेंगे तो फिर जिंदा बाकी ना बचेंगे। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद बढ़ते जाए उतना होशियार से होशियारतर होते जाए। बस हमारी मुश्किल यही है कि हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं गुरूर हमें इतना घेर लेता है, इतना मकरूर हो जाते हैं कि समझने लगते हैं अब तो हमने सब कुछ समझ लिया है, अब तो हम सब कुछ जान चुके हैं, अब तो हम शैतान के मुकाबले में बिल्कुल महफूज हो सके हैं। नहीं, इमाम फरमाते हैं देखो फजीलत इंसानी तक पहुंचना वाहिद रास्ता हमारा रास्ता है, और हमारे रास्ते पर चलने वालों ही के लिए शैतान ने अपने जाल बिछाए हैं। ये न समझिए कि हम अगर अहले बैत के रास्ते पर आ गए हैं तो अब हम महफूज हो गए, अब हमारी जमानत मिल गई, अब हमारी बहिश्त पक्की, हमारी नजात यकीनी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कदम कदम पर खतरात हैं। या अब्दुल्लाह लगद नसबा इब्लीस हवाइनहु फी दारिल गुरूर, ए अब्दुल्लाह याद रखो कि शैतान ने قدم قدم پر اس پر فریب دنیا میں اپنے جال بچھا رکھے ہیں. ولا یقصدوا فیھا الا اولیاءنا, اور اس کا ٹارگیٹ, اس کا نشانہ اگر کوئی ہے تو وہی ہے جو ہمارے راستے پر چلنے والے ہیں, جو ہمارے چاہنے والے ہیں, جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں, جو اپنے کو مولائی سمجھتے ہیں. ان کے لیے شیطان نے جگہ جگہ پر جال نصب کر رکھا ہے. اس کے بعد امام مولائیوں کی پہچان بیان کرتے ہیں کہ لقد جلت الآخرت فی اعینہم. تین علامتیں یہاں پر امام نے بیان کی ہیں. پہلی علامت تو یہ ہے ان کی نگاہ میں آخرت اتنی عظیم ہے کہ لا یریدون بہا بدلا. ابھی تو ہمارے پاس بات چیزیں قیمتی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں, ہم بات کرتا اس قیمتی چیز کو کسی اور چیز کے بدلے میں جو ہے بیچ دیتے ہیں, جسے ہم اس سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. ہمارے پاس فرض کیجیے گھر موجود ہے, بڑا قیمتی گھر ہے, بڑا عزیز ہے ہمیں وہ گھر, لیکن جب قیمت اچھی ملنے لگتی ہے تو اسی گھر کو بیچ دیتے ہیں. یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ عزیز سے عزیز تر چیز کو جب اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی ہے تو اسے بیچ دیا کرتے ہیں, اس کا سودا کر لیا کرتے ہیں. ہمارے چاہنے والے وہ ہیں جن کی نگاہ میں آخرت صرف قیمتی نہیں ہے بلکہ اتنی قیمتی ہے کہ لا یریدون بہا بدلا, اس کو کسی چیز کے بدلے میں بیچنے کو تیار نہیں ہوں گے. یعنی آخرت وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں ساری قیمتیں حقیر ہیں, چاہے وہ مال دنیا ہو, چاہے عزت ہو, چاہے شہرت ہو, چاہے دولت ہو, چاہے عہدہ و منصب ہو, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آخرت کے مقابلے میں ٹک سکے. لقد جلت الآخرت فی اعینہم حتی لا یریدون بہا بدلا. آج ہماری مشکل یہ, بہتوں کو دیکھا گیا ہے نمازیں پڑھنے لگتے ہیں, روزے رکھنے لگتے ہیں, لیکن ایک مقام وہ آتا ہے جب وہ اس میدان میں پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. پتا چلا کیوں بھائی آپ کا چہرہ تو ایسا نہیں تھا, اب کیا بات ہے, کبھی تو مجبوری پیش آ گئی ہے, کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے. فلاں خاتون سے پوچھی, آپ کا سر تو اس طرح سے نہیں رہا کرتا تھا, آپ کا بدن تو اس طرح سے نہیں ہوتا تھا, اب کیا پریشانی آ گئی ہے؟ نہیں, کچھ حالات ایسے ہو گئے ہیں جس کی بنا پر ہم نے مجبوراً یہ راستہ اپنا لیا ہے. فلاں سے پوچھیے, آپ تو نماز جماعت میں اول وقت آیا کرتے تھے, اب کیا پریشانی ہو گئی, اب کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ ان کا جی نہیں, کچھ مسائل ایسے ہیں آپ کو نہیں پتا ہے, جس کے یقیناً ہوں گے مسائل, ہمیں کیا پتا, ہمیں ہر ایک کا راز نہیں معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے, کس کے حالات کیا ہیں. لیکن عزیزو یہ ساری باتیں وہیں آتی ہیں جہاں قیمت آخرت سے زیادہ کسی کو مل گئی ہو. امام فرماتے ہیں لقد جلت الآخرت فی اعینہم, آخرت ان کی نگاہ میں اتنی قیمتی ہے, اتنی عظیم ہے, اتنی باعظمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹک ہی نہیں سکتی ہے, کوئی چیز ٹک ہی نہیں سکتی ہے. لقد جلت الآخرت فی اعینہم. اس کے بعد امام تیسرا جملہ فرماتے ہیں, آہ آہ علی قلوب خشیت نورا. ان کی دوسری پہچان یہ ہے, ہمارے چاہنے والوں کی دوسری علامت یہ ہے, ان کے دل معنوی نور سے بھر دیے ہیں. نور دیکھیے, طاقتیں دو طرح کی, انرجی دو طرح کی ہے, قوت دو طرح کی, ایک مادی قوت ہے, ایک معنوی قوت ہے. عالم محسوسات میں بھی مادی قوت کا مظہر مانا جاتا ہے نور, مادی انرجی کا مظہر نور ہے. روحانی طاقتوں میں بھی, روحانی طاقتوں کا مظہر بھی نور ہے. اب یہ نور, یہ مادی نور اور ہے, وہ مانوی نور اور ہے. لفظیں اگر سے دونوں ایک ہی ہیں, مادی طاقت کا مظہر بھی, سب سے بڑی مادی طاقت انرجی جو ہے وہ نور کی شکل میں ہوتی ہے. نور سے زیادہ طاقتور کوئی انرجی نہیں ہے. اسی طرح سے مانوی انرجی اور مانوی قوت اور روحانی طاقت کو بھی اگر خلاصہ کیا جائے, اسے بنایا, اسے جو بیان کیا جاتا ہے نور کی شکل میں, بس کہا اللہ نور السماوات والارض, نور سے مراد یہ نور تو نہیں کہ اللہ اس طرح کا کوئی نور ہے, یعنی زمین اور آسمان میں جتنی طاقتیں ہو سکتی ہیں ان سب کا نچوڑ خلاصہ ہے اللہ کی. करके जो है फिल्में बनती थी, वीडियो कैसेट हुआ करते थे, जो काम 10 वीडियो कैसेट क्या करता था, आज वही काम एक ये जो है डीवीडी कर लेती है। अब उस डीवीडी में भी जो है माइक्रो डीवीडी आने लगी कि जो सैकड़ों डीवीडी को छोटी सी चीज में इकट्ठा कर दिया गया, यानी बहुत सारी तवानाइयों को एक जगह के ऊपर जमा कर दिया। होशिया अरबी जबान में वही इस्तेमाल किया जाता है, होशिया कदम अरबी जबान में वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां बहुत सारी ताकतों को समेत के एक जगह पे जमा कर दिया जाए। एक जगह पर बहुत सारी ताकतों को समेट के अगर जमा कर दिया जाए, जैसे कहा जाता जो कुछ कुरान में है वो सूरह फातिहा में है, जो कुछ सूरह फातिहा में है वो ये जो है बिस्मिल्लाह में है, और जो बिस्मिल्लाह में है वो उसके नुक्ते में है कि मौला फरमाते हैं अला नुक्ता तो तहत अलबा। सारी चीजें जमा इकट्ठा सारी तवानाई एनर्जियां, इमाम फरमाते हैं मोमिन का दिल उस संदूक के मानंद है, आह अला कुलूबिन खुशियत नूरा, मोमिन का दिल उस संदूक के मानंद है जिसमें सारी रूहानी एनर्जियां जमा कर दी गई। हमारा चाहने वाला कोई मामूली नहीं है, हमारे चाहने वाले की सिफत यह है कि सारी मानवी ताकतें उसके दिल में यज्जा कर दी गई हैं। उसके बाद फरमाते हैं इन्नमा कानत दुनिया की आयुनहिम व इन्नमा कानत दुनिया की आयुनहिम बिमंजिलति शजाइल अरकम वलादू बिल आजम। कल शजाइल अरकम और दू आजम का माना बयान कर चुका हूं, दुनिया उनकी निगाह में उस सांप के मानंद है जो सहरा में लकड़ी के मानंद खड़ा हो जाता है, खूबसूरत सांप देखने वाला दूर से समझता है वो सूखी हुई खूबसूरत सी लकड़ी है, जब उसे वो हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है तो सांप उसे जो है ये जो है निगल जाता है। या उस दुश्मन के मानंद है उसकी निगाह में दुनिया जिसकी समझ में कोई दलील कोई मंतिक नहीं आती है। इंसान जब ऐसे के करीब जाता है तो बड़ी एहतियात के साथ जाता है, बड़ी एहतियात के साथ इसके करीब जाता है। अनेक बिल्लाह वस्तव हशु मिम मस्तअनसा बिहिल मुकरफून, ये अल्लाह से मायूस होते हैं और उन तमाम चीजों से वहशत ज़दा रहते हैं जिससे अहले दुनिया दिल लगाते हैं, जिससे अहले दुनिया मायूस होते हैं। तो अजीजों ने तीन सिफतें बयान की, पहली सिफत आखिरत उनकी निगाह में बहुत अजीज, दूसरी सिफत ये कि रूहानी ताकतें उनके दिल में यज्जा हो गई हैं, सारी ताकतें उनके दिल में यज्जा है, तीसरी ये है कि दुनिया के सिलसिले में बड़े मोहताज रहते हैं। आमतौर से जब इस तरह की गुफ्तगू आती है इमाम के बाद फरमाते उलाए का उलियाई हक्का, यही है हमारे सही चाहने वाले, जिनमें ये सिफात पैदा हो जाए वो है चाहने वाले, जिनमें ये सिफात पैदा हो जाए वो है हमारे रास्ते के रहरो, हमारे रास्ते के रहरो वही है। सिर्फ किसी की तारीफ कर देना किसी की ये जो है बुराई कर देने से हमारी विलायत साबित नहीं हो जाती, मौलायत उस वक्त साबित होगी जब ये तीन सिफतें पाए जाएं। उलाएका उलियाई हक्का, जब तरके दुनिया की बात आती है, जब दुनिया ये जो है दुनिया से लो जो है लगाने की बात आती है तो आम तौर से एक मनफी रास्ता भी लोग अपना लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि फिर हमें दुनिया में कुछ करना नहीं चाहिए, अब इसका मतलब ये है कि रूह में दुबला होकर के जो है नमाज बिछा करके बैठ करके सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही करते रहें, दुनिया में कुछ भी होता रहा है हमें उसे परवाह नहीं होना चाहिए। दुनिया को अहले दुनिया के लिए छोड़ दिया जाए, दुनिया को जालिमों के लिए छोड़ दिया जाए, दुनिया को ये जो है सितमगरों के लिए छोड़ दिया जाए। अब अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो करने को हमसे क्या मतलब है, हम क्यों खामखा अपनी जबान खोलें। और अजीजों बार दफा जबान खोलने के नतीजे में लोगों ने बरसों इस्तगफार किया है। ख्वाजा रफी बड़े मशहूर आलिम हैं, मशहद मुकद्दस में उनकी कब्र है मौजूद है। ख्वाजा रफी मौलाए कायनात के साथ जंग के सफीर में थे, अचानक उनके दिल में चुभा पैदा हुआ कि मुसलमान मुसलमान के खिलाफ तलवार चला रहा है, यह हमें बर्दाश्त नहीं है, बहुत ही मुत्तकी और परहेजदार अपने को जो है बनाना चाहते थे, दुनिया गुरेज बनाना चाहते थे। कहने लगे कि या अली हमें आप कहीं ऐसी जगह भेज दिए जहां तलवार चलाने में हमारा हाथ ना हिचकिचाए, हमें ये जो है सरहदों पर भेज दिया कि हम काफिरों से जंग करें। बहरहाल यही ख्वाजा रवि ने दुनिया को तर्क किया और जो है मुसल्ला इबादत को अपना लिया। जब सन 61 हिजरी में यजीद ने इमाम हुसैन को शहीद किया है और उन्हें इमाम हुसैन की शहादत की खबर मिली, बेसाख्ता फिक्री आवाज के तौर पर उनके मुंह से निकला, खुदा लानत करे उस कौम पर जिसने नवासे रसूल को शहीद कर दिया। ये जुमला कहने के बाद इस्तग़फ़ार करने लगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह मैंने ये जुमला क्यों कह दिया, हमें तो दुनिया की कोई बात ही नहीं करना चाहिए था, हमें तो सुनकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर कहना चाहिए था, ये मैंने दुनिया की बात क्यों कर दी, हमें क्या मतलब किसने मारा कौन मारा, हमें क्या मतलब, हमारा तो काम है सिर्फ जाते इलाही में फर्क रहना। ये इहराम सिर्फ कल नहीं था, ये इहराम आज भी है, आज भी लोग तस्बीह पढ़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं इससे, इसके बजाय कि हम ये पढ़ें अखबार में कि किसने किस पर जुल्म किया। क्यों अपना वक्त हम इस चीज में सर्च करें, क्यों हम खबरें सुने, असल कौन क्या करता है, हमसे क्या मतलब है कि गजा में कितने सौ बच्चे बेगुनाह मार किए गए, हम दुनिया की बातों में क्यों पढ़े। हमारे यहां तो दुनिया से दौ लगाना ही नहीं, हब तो दुनिया रात और कुल खतिया, इन्होंने हुब्बे दुनिया का मकसद ही बदल समझा। अगर इस्लाम दुनिया से मुंह मोड़ने की बात करता है तो दुनिया को तर्क करने की बात नहीं करता, दुनिया से लौ न लगाना अलग मामला है और अपने फराइज की अदायगी अलग मामला है। वही खुदा जिसने दुनिया से लौ न लगाने का दर्स दिया है, उसी खुदा ने कुछ हमारे फराइज भी मुअय्यन किए हैं। फराइज की अदायगी दुनिया की आबादी नहीं है, दुनिया की आबादी दो तरह से होती है, एक दफा दुनिया को आबाद करना है अपने लिए, एक दफा दुनिया को आबाद कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों को जो है पूरा करने की, जो अल्लाह ने मुअय्यन किया। कुछ फराइज हैं जो अल्लाह ने हमारे सुपुर्द किए हैं, कुछ फराइज हैं जो अल्लाह ने हमारे लिए मुअय्यन किए हैं, हम उन फराइज को छोड़ कैसे सकते हैं। अमीरुल मोमिनीन से बड़ा कौन ऐसा इंसान मिलेगा रसूल खुदा के बाद जिसने दुनिया को ठोकर मारी, अमीरुल मोमिनीन से बड़ा कोई मिलेगा जिसने दुनिया को ठोकर मारी हो। आज वो सारे अपराध जो दुनिया से गुरेज की बात करते हैं किसी ना किसी तरह अपना सिलसिला मौलाए कायनात से मिलाते हैं, आज सारे सूफिया अपना सिलसिला मिलाते हैं ना मौलाए कायनात से, मगर मौलाए कायनात की सीरत क्या रही, यकीनन अली ने बेपनाह मजम्मत दुनिया की है। वही अली ने कहता है या दुनिया गुरी गैरी फकत तलक्को के सरा था, ये दुनिया चाहता किसी और को धोखा देना, मैं तीन तलाक दे चुका हूं दार जाता भी, तीन तलाक के बाद अब ये जो है रुजू भी नहीं हो सकता है, जहां किसी और को धोखा देना। वही अली जो दुनिया के बारे में कहता है इन्ना दुनिया को मंदी लहबरो मिन वरकतिन फी फमे जरादतिन तफहमुहा, तुम्हारी ये दुनिया मेरी निगाह में उस पत्ते से भी कमतर है जिसे टिड्डी चबा रही हो, टिड्डी के मुंह में चबाए हुए पत्ते से भी तुम्हारी दुनिया मेरी निगाहों में पस्तर है। वही अमीर मोमिनीन जो दुनिया के बारे में ये फरमाते हैं वल्लाह ले दुनिया को महाद ही हिंदी अहवनो मिन इराक खिंजीर फी यदे मजमूम, खुदा की कसम मेरी निगाह में तुम्हारी दुनिया सुअर की उस हड्डी से भी पस्तर है जो कोढ़ी के हाथ में। अब इससे बड़ी तावील और क्या हो सकती है। वही अली रोमनीन दुनिया के बारे में ये तावील करते हैं, क्या वो अली सिर्फ जो है मुसल्ले इबादत पर बैठे रहते थे, क्या उस अली को समाज के हालात से कोई मतलब नहीं था, कौन किस पर जुल्म करता है, कौन किस कौन जो है जुल्म सह रहा है, कौन जुल्म की चक्की में जो है पिस रहा है। जिस अली ने दुनिया को इस तरह ठोकर मारी है उस अली ने दुनिया को सबसे ज्यादा आबाद किया। आप देखें कि अली ने क्या दुनिया को आबाद नहीं किया, जितने बागात अली ने लगाए उतना बाग किसने लगाया है, जितने कुएं अली ने खोदे हैं उतना कुआं किसने खोदा है, अभी कुआं खोदने के बाद कुआं खोदने के बजाय जो है मुसल्ला इबादत पे जाके बैठ जाते, जितनी देर में कुआं खोदते थे दो चार रकाते नमाज, दो चार सौ रकाते नमाज और पढ़ लेते, जितनी देर में बाग लगाते दो चार सौ रकाते नमाज और पढ़ लेते। नहीं, अभी मोमिन जानते हैं कि जहाँ हमारी जिम्मेदारियां अल्लाह की इबादत है, उसकी परस्तिश है और दुनिया की नेमतों से मुंह मोड़ना है, वही हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर इस जमीन पर कोई भूखा है तो उसका पेट भरे, अगर कोई जुल्म की चक्की में पिस रहा है, जुल्म की चक्की के दरमियान कड़ाह रहा है, उसकी आवाज को सुन करके, उसकी आवाज को जो है नजरअंदाज करके अगर हम जो है मुसल्ला इबादत पर चले जाते हैं तो हमारी इबादत बाकी, हमारी इबादत बाकी है। लिहाजा मौलाए कायनात जहां रात की तारीखियों में मसरूह के इबादत रहा करते थे, वही अली जब ये सुनते हैं कि एक औरत के पैर से उसकी पाजेब छीन ली गई है, अगरचे वो औरत जो है मुसलमान नहीं है, अगरचे वो औरत यहूदी है, लेकिन जब मौला को इत्तला मिलती तो कहते अगर मोमिन ये खबर सुन करके मौत की आरज़ू करे दोबारा, वही अमीरुल मोमिनीन जिनका दुनिया के बारे में ये नजरिया है, वही अली एक शख्स बैठा हुआ है मौला के पास और दुनिया की जो है बदअमत करने लगा। अलबत्ता जाहिर है कि वो था जो दुनिया तलब था, मगर दिखावे के लिए दुनिया की जो है बदअमत कर रहा था। एक दफा मौला कायनात से खिताब करके कहते हैं, ये कौन है जो दुनिया की बदअमत कर रहा है? दुनिया जानते हो कौन क्या है? इन्ना दुनिया दारु सिद्क़िन लिमन सदक़ा, दुनिया सच्चाई का घर है उसके लिए जो दुनिया के साथ सच्चाई से पेश आए। दुनिया के साथ दो तरह से पेश आया जा सकता है, एक तो अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की नेमत समझ के इस्तेफादा किया जाए और एक दुनिया की नेमतों से इस्तेफादा अल्लाह को फरामोश करके इस्तेफादा किया जाए। अगर दुनिया की नेमतों से इंसान इस्तेफादा कर पाए अल्लाह को फरामोश करके, ये इसे खुदा से गाफिल कर देगी, ये इसे भटका देगी, ये इसे उस मकाम तक जाने नहीं देगी जो दर्जा अल्लाह ने इंसान के लिए मुकर्रर किया है, ये उसे जानवर जैसा बल्कि जानवर से बदतर बना देगी। लेकिन एक दफा इंसान अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा करता है, ये समझ के इस्तेफादा करता है कि अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की अता की हुई नेमत है, जब अल्लाह ने नेमत अता की है तो कुछ जिम्मेदारियां कुछ फरायज भी हमारे मुकर्रर किए हैं। इन्ना दुनिया दारो सिद्दिन लमन सदा कहा व दारो आफियतिन लमन फहम अनहा, ये दुनिया यही दुनिया आखिरत से बचाव का घर भी है, अजाब आखिरत से बचने का दरिया भी है, मगर किसके लिए? जिसने दुनिया को पहचाना, जिसने दुनिया की शनाख्त की है, जिसने जिसको पता है कि ये दुनिया खुद बखुद नहीं बनी है, इसका एक बनाने वाला भी है, बनाने वाले का एक मकसद भी है, जिस मकसद के तहत उसने दुनिया को बनाया है। उसके बाद फरमाती है इन दुनिया दारो आफियतिन लिमन फहमा मिनहा लिमन फहमा अनहा, उसके बाद फरमाते हैं कि वदारो मौइज़तिन लिमन इत्तइज़ा बिहा, ये दुनिया जो है मौइज़े की जगह भी है, जिस तरह से एक वाइज मौइज़ा करता है, कुरान मौइज़ा करता है, पैगंबर मौइज़ा करते हैं, अंबिया मौइज़ा करते हैं, ये दुनिया भी मौइज़ा करती है दुनिया, मगर उसके लिए जो इससे इबरत हासिल करे। अजीजों, अगर हम दुनिया में रहेंगे नहीं, अगर दुनिया के मसाइल पर हमारी निगाह न होगी, अगर दुनिया के खबरें हम पढ़ेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि फिरौन का अंजाम क्या हुआ? हम जानेंगे कैसे कि नमरूदों का अंजाम हुआ क्या? और जब तक इसे समझेंगे नहीं उस वक्त तक इबरत हासिल न करेंगे, और जब तक इबरत हासिल न करेंगे गफलत में खुद वैसे ही बन जाएंगे। ये दारे मौइज़ा है उस शख्स के लिए जो इससे मौइज़ा हासिल करना चाहता है। फरमाते दुनिया जानते हो क्या है? दुनिया मस्जिद औलिया अल्लाह, औलिया खुदा के सजदा करने की जगह है दुनिया, और दुनिया मुसल्ला मलाइकतिल्लाह फरिश्तेगान खुदा की नमाज पढ़ने की जगह है दुनिया, और दुनिया महबतो वहीला अल्लाह की वही जो नाजिल हुई वो इसी दुनिया में नाजिल हुई है, और दुनिया मत चलो औलिया इल्ला दुनिया और याए खुदा की तजारत की जगह है। इफ्तसबू फी हर रहमान, وَرَبِحُ فِيهَا الْجَنَّةِ, اسی دنیا میں تجارت کر کے انہوں نے جنت حاصل کیے. کل میں نے عرض کیا تھا جنت اور جہنم ہم خود اپنے اعمال سے بناتے ہیں. یہ اعمال کہاں ہوں گے؟ یہ اعمال دنیا ہی میں تو ہوں گے. صداقت, امانت, ظلم کی کے جو ہے مقابلے میں کھڑے ہو جانا, مظلوم کی حمایت, یہ جو ہے مصلے سے اٹھے بغیر ممکن ہے کیا؟ اگر انسان صرف جو ہے محراب عبادت میں بیٹھا رہے اور اسے اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ دنیا کے حالات کیا ہیں, یہ فضیلتیں وہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. تو پھر بات کیا ہوئی؟ ایک جگہ دنیا کی اتنی جو ہے مذمت کہ اسے سور کی ہڈی جو کوڑی کے ہاتھ میں ہے اس سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں, اس پتی سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں جسے ٹٹی نے چبا کر کے پھینک دیا ہے. اور اس جگہ پہ دنیا کی اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں. سارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کو کس عنوان سے استعمال کیا جا رہا ہے. اگر دنیا حکم خدا کے مطابق دنیا سے استفادہ کیا جائے تو وہ قابل مدحوثنا ہے, اور اگر دنیا کو حکم خدا کو پامال کر کے استفادہ کیا جائے تو لائق جو ہے مذمت ہے. چنانچہ مولا کائنات اس مسئلے کو اور واضح کرتے ہیں کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں, دنیا کے شیدا ہو جاتے ہیں, دنیا کے عاشق ہو جاتے ہیں, دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. البتہ ہر ایک کی قیمت الگ ہوتی ہے. کوئی $100 میں ایمان بیچتا ہے, کوئی $1,000 میں بیچتا ہے, کوئی لاکھ میں بیچتا ہے, کوئی کروڑ میں بیچتا ہے, لیکن بکتے رہتے ہی ہیں لوگ. مولا کائنات فرماتے ہیں سنو, اللہ کا حکم, اللہ کی اطاعت, اللہ کی قوانین پر عمل اتنا اہم ہے. ہزار دو ہزار, لاکھ دو لاکھ کی بات نہیں ہے. واللہ لو اوتیت العالم سبع ببات تحت افلاکہا علا عنوفی اللہ فی نملت اغلبہا جلب شعیرت ما فعلتہو. خدا کی قسم, خدا کی قسم, ہزار دو ہزار, لاکھ دو لاکھ, کروڑ دو کروڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اگر یہ پوری کائنات اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے, شرط بس اتنی ہو کہ ہم اللہ کی اتنی سی نافرمانی کر لیں, اتنا سا اس کے حکم سے سرتابی کر لیں. کتنی سرتابی؟ کس گناہ کی بات ہو رہی ہے؟ کسی کو قتل کر دیں, کسی پر حملہ کر دے, کسی بے گناہ کی زندگی چھین لے, نہیں, چیونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے اسے چھین لوں. چیونٹی کے منہ میں جو کا چھلکا ہے اسے چھین لوں, ماں پال تو ہوں. خدا کی قسم ساری نعمتیں ٹھکرا دوں گا مگر اللہ کی اتنی نافرمانی کرنے کو تیار نہیں. جس دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے وہ دنیا ہے جسے اللہ کی نافرمانی کے ذریعے حاصل کیا جائے, جس کے جہاں اس کے قانون کو پامال کر کے حاصل کیا جائے. عزت حاصل کرنا بہت اچھی چیز ہے, لیکن عزت اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں حکم خدا کو پامال کر کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دولت جو ہے بری چیز نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے قل من حرم دین اللہ الذی اخرج لعباده, کس نے حرام قرار دے دیا ہے اس زینت کو, ان آرائش کو, ان تمام جو ہے لذتوں کی چیزوں کو جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خلق کیا ہے, وطیبات من الرزق اور پاک و پاکیزہ رزق, کس نے کہا ہے؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اصلا یہ نعمتیں مومنوں ہی کے لیے ہیں, دوسرے اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو فائدے کے طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں. خالصة يوم القيامة, یہ نعمتیں یہاں تو مومنوں کو بھی, مومنوں کے ساتھ ساتھ غیر مومنین بھی اسے استفادہ کر رہے ہیں, اگرچہ پیدا اللہ نے مومنوں کے لیے کیا ہے, لیکن قیامت میں صرف اور صرف مومنوں کو یہ نعمتیں ملے گی. تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں, یہ ساری دنیا پیدا مومنوں کے لیے کی ہیں. جس طرح سے کوئی انسان اگر دسترخوان بچھاتا ہے اپنے ہاں, مہمان کو جو ہے بلاتا ہے اپنے ہاں, مہمان کو بلائے, دسترخوان پھیلا دے, دسترخوان پہ ساری چیزیں لگا دیے ہیں, ایک سے ایک کھانا, ایک سے ایک غذا, ایک سے ایک قورمہ, ایک سے ایک پلاؤ, طرح طرح کے کھانے لگانے کے بعد مہمان جب آئے اس سے کہے خبردار ہاتھ نہ لگا, हाथ न लगाना, क्या कोई ऐसा इंसान मिलता है? हम जैसे बकील इंसान भी ऐसा काम नहीं करते हैं, तो क्या वो वली ये सारी नेमतें पैदा करे हमारे लिए और फिर हमसे ये कहा जाए कि खबरदार इसे हाथ न लगाना? नहीं, खाओ मगर उतना ही खाओ जितना तुम्हारे फायदे में हो, वो चीजें न खा लेना ये तुम्हारे नुकसान में हो। अगर हुक्म खुदा के मुताबिक खाओगे तो तुम्हारे फायदे में है, अगर हुक्म खुदा को पामाल करके उसे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे नुकसान के लिए है। एक सलावत पढ़ेंगे दुनिया की नेमतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हुक्म खुदा को पामाल कर। आज हमारी सारी मुश्किल यही, हम जबान से जरूर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह को रब मानते हैं, लेकिन एक तरह की जो है ये जो है रुबूबियत हम अपने लिए भी पाए, एक तरह की जो है रुबूबियत हम अपने लिए भी पाए हैं। हम हमेशा रब का माना तो यही होता है ना, रब का माना ये है कि वो हमारी मसलहतों को वो बेहतर जानता है, हमारी मसलहतें उसे ज्यादा बेहतर मालूम है। और जब हम हुक्म खुदा के मुकाबले में अपने तौर पर मसलहतें तय करते रहते, ठीक है अल्लाह ने ये कहा है, ठीक है अल्लाह ने ये कहा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो वक्त का तकाजा ये है, यानी इसका मतलब है कि अब अल्लाह कल तक था, आज हमारे लिए अल्लाह रब नहीं रह गया है, आज रब के मंजिल पर काम पर हम खुद फायद हो चुके हैं। बात सही है कि फला कारोबार हराम है, फला चीज का बिजनेस जायज नहीं है, फला चीज अपने स्टोर में रखना हराम है, लेकिन अब अगर इसको न रखेंगे तो इतनी बड़ी आमदनी से हम महरूम रह जाएंगे। हाँ कि मानते हैं कि अल्लाह ने इसे हराम करार दिया है, लेकिन अगर हमने ये न किया तो इतने भारी नुकसान से दो चार हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मंजिल पर आकर के हम अल्लाह को रब नहीं मान रहे हैं, अपने को रब मान रहे हैं। अगर इमाम फरमाते हैं इन नमर कानत दुनिया की आयोन हिम बेमंजिल शजाजन, आखिरत उनकी निगाह में अजीम है, दुनिया उनकी निगाह में उस खूबसूरत सांप के मानंद है, उस दुश्मन के मानंद है जो किसी मंदिर को नहीं समझता है। तो यह नहीं कहा गया कि उससे मुंह मोड़ लो, बल्कि इमाम एहतियात बता रहे हैं। दुनिया में जब वो कदम रखते हैं तो कदम कदम पर मोहताज रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, वो रोजे हासिल करते हैं मगर ये ख्याल रहता है कि अल्लाह की नाफरमानी ना हो, वो दौलत को हासिल करते हैं मगर ये ध्यान रखते हैं कहीं अल्लाह की नाफरमानी ना हो, उन्हें शोहरत से भी परहेज नहीं है मगर अल्लाह की नाफरमानी की कीमत पर वो शोहरत नहीं हासिल करना चाहते हैं। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले, फरमाते हैं कि वो ऐसे दुनिया गुरेज हैं, ऐसे दुनिया गुरेज हैं कि बहिम तुक्षको कुल्लो फितनतिन वतुद्फाओ कुल्लो बलिया, ये ऐसे हैं जिससे मेहराबे इबादत में नहीं बैठे रहते, ये मेहराबे इबादत में इबादत के साथ साथ दुनिया में इतने एक्टिव होते हैं, दुनिया में इतने फाल होते हैं कि सारे फितने इनके जरिए से मुंकशिफ हो जाते हैं, फितनों के चेहरे से नकाब उठाना इनका काम है। अरे जो दुनिया से साफिल मेहराबे इबादत में बैठा है वो किस तरह से फितनों के चेहरे से नकाब उठाएगा, ये बताएंगे कि जो चेहरा आज नजर आ रहा है उस चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा है, वो चेहरे हकीकी चेहरे लोगों के सामने ये लाएंगे, तुक्षफो बिहिम कुल्लो फितना व तुक्षफो बिहिम कुल्लो बलिया, हर बला इनके जरिए से दूर होगी, जो खाना नशी होगा, जो जंगलों में जाकर के बैठा रहेगा उनके जरिए से कौन सा फितना दूर हो सकता है, कौन सी बलाएं दूर हो सकती हैं? ये वो अपराध होते हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, उन्हें तो ये देखना होता है कि अगर आलम इस्लाम अगर ये जो है मुस्लिमीन किसी बला के शिकार हैं, सीना सिपर हो जाते हैं बलाओं के मुकाबले में, हमारी जिंदगी चाहे कुर्बान हो जाए लेकिन मुसलमानों के जरिए मुसलमानों के सर से बलाओं का बादल दूर हो जाए। हर तरह के कोई ये होते हैं वो अपराध दुनिया बेजार है।
दुनिया बेदारी का मफहूम नजर के ले लिया जाए, नहीं दुनिया बेदार है मगर दुनिया को आबाद भी कर रहे हैं, दुनिया से बेदार है मगर दुनिया को तामीर भी कर रहे हैं, दुनिया तामीर कर रहे हैं अपने लिए तामीर नहीं कर रहे हैं। एक दफा है जितना कमाया सब अपने लिए, जितना बनाया सब अपने लिए, और एक दफा क्या होता है बना रहे हैं दूसरों के लिए बना रहे हैं। मौलाए कायनात के घर में फाते होते थे, कपड़े में घर पैबंद लगे रहते थे, फाकों पे फाते होते रहते थे, मगर अमल के मैदान में क्या था? कुआं खोदा, कुआं उस जमाने में कोई मामूली दौलत तो नहीं थी, कुआं खोदा पानी निकला, जैसे ही पानी निकलने लगा बनी हाशिम खुश हो गए, हम कुएं के मालिक हो गए। मौला ने कहा खुश न हो, ये कुआं तुम्हारे लिए नहीं है, ये कुआं सारे इंसानों के लिए है। बाग लगाया, बाग लगाने के बाद फौरन कलम कागज लगाया, कलम कागज बनाने के बाद दे दिया ये कलम आवाम है, ये हमारे घर वालों के लिए नहीं है। अजीजों जिस अली ने इतने कुएं खोदे, जिस अली ने इतने बागान लगाए, उस अली के घर में फाका हो रहा है, उस अली के घर में फाका हो रहा है। मौलाए कायनात एक दिन घर में आते हैं, आने के बाद अब शायद ये जो है सफर में गए थे, जंग में गए थे, कहां से वापस आए नहीं मालूम है, रवायत में नहीं है। मौला घर में आते हैं, आने के बाद मासूम आलम से कहते फातिमा घर में कुछ खाने को है, बीवी फरमाती है अल्लाह अकबर, क्या इस घर का मिजाज है, इस घर का मिजाज क्या है? बीवी कहती है वल्लजी अज़्ज़मा हक्क, इस तरह से एक बीवी अपने शौहर से बात करती है। ये ना कहें शौहर अली जैसा अजीम था, शौहर अगर अली जैसा अजीम था बीवी भी फातिमा जैसी अजीम था। क्या अदब है, क्या तरीका है गुफ्तगू करने का, कसम है उस जात की जिसने आपके हक को अजीम बनाया। पहले शौहर की अजमत का इकरार करती है, ये नहीं कि सिर्फ अली अजीम है, फातिमा भी अजीम है। वल्लजी अज़्ज़मा हक्कक, कसम है उस जात की जिसने आपके हक को अजीम बनाया है। तीन दिन हो गया है हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, ना मैंने कुछ खाया है ना बच्चों ने कुछ खाया है, शिकवा नहीं है जबान पर, दुनिया गुलेजी से कहते हैं, दबान पर शिकवा नहीं है, खाना मिल गया तो खा लेंगे, ना मिला अब खाना न मिलने के शिकवा नहीं है, जानती है कि शौहर राह इस्लाम में गया हुआ है। अली तीन दिन हो गया हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है, इतनी हयादार थी कि पैगंबर के पास भी नहीं गई हाथ फैलाने के लिए। वल्लज़ी अज़्ज़मा हक्कक, तीन दिन से कुछ खाया नहीं है। मौलाए कायनात अभी नया नया बाग लगाया था, गए जाकर के बाग को बिठा, रवायतों में 36,000 दीनार का बाग बिका, जो बाग मौलाए कायनात छोटा मोटा बाग नहीं लगाया करते थे, एक बाग में अली के 48 टन खजूर हुआ था, एक बाग की बात है, यानी इससे बड़े बड़े कितने बाग थे, 36,000 दीनार में बाग बिका। मौलाए कायनात सोचा बहुत सा पैसा मिल गया है, चले जरा मस्जिद में देखें शायद कोई हाजतमंद बैठा हो, जाकर के उसकी भी जरूरत को देख ले। मौला लाए और इतना पैसा हम लेके क्या करेंगे, लाए, लाने के बाद उसे मस्जिद के सहन में रख दिया, उसके बाद आवाज दी जिसे जरूरत है आकर के उठा ले, जिसे जरूरत है आकर के उठा ले। अहले बैत का एक अदब यह था, अहले बैत की तहजीब यह थी, जब भी किसी को कुछ देते थे उसके चेहरे पर निगाह नहीं करते, उसकी आंखों में आपसे आंखें नहीं मिलाते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मोहताज को शर्मिंदगी का एहसास ना होने पाए, खजालत का एहसास ना होने पाए। अली ने पैसा रख दिया, तवज्जो अली की दूसरी तरफ है, लोग आ रहे हैं ले जा रहे हैं, इतना एहसास है कि लोग आ रहे हैं, किसने कितना उठाया इसकी तरफ अली की तवज्जो गई है। एक दफा देखा कि कोई नहीं आ रहा है, अली ने क्या अब सबको मिल चुका है, किसी को जरूरत नहीं रहेगी, अब जब पलट के देखा तो खाली हो चुकी थी जगह। फिर मौलाए कायनात जो अपने घर पलटते हैं तो खाली हाथ पड़ते, देखे दुनिया को आबाद करना, अली ने दुनिया को खूब आबाद किया उस 25 साल दौर में, जब अमीर उम्मीन इज्तमाही मसायल से अलग कर दिए गए थे, अलग थे नहीं अली, अलग कर दिए गए थे अली, उस वक्त में अली ने खाना नशीनी अख्तियार नहीं की है, उस वक्त भी मैदान अमल में फ़ाल हैं, जहां अली को कि जब जिस जगह पे जो है जरूरत पड़ गई है, इबादत अपनी जगह पर, मुसल्ला अपनी जगह पर, जुहद अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस्लामी जिम्मेदारियां और फराइज की अदायगी अपनी जगह पर है। ये दुनिया गुरेज کس طرح سے دنیا کو آباد کرتے ہیں. فرماتے ہیں امام ببہم تکشفو کلو فتنت وتطفئو کلو بلیہ، ان کے ذریعے سے ہر فتنہ منکشف ہوگا اور ہر بلا دور ہوگی، چاہے اس کی جو بھی قربانی دینا پڑے. اس کا بہترین نمونہ کربلا ہے. جب بلا اسلام پر آئی، جب بلاؤں نے چاروں طرف سے اسلام کو گھیر لیا اور اسلام کا وجود خطرے میں پڑ گیا، تو ایک دفعہ مولائی نہیں مولائیوں کا امام آگے بڑھتا ہے اور مٹھی بھر مولائیوں کے ہمراہ میدان عمل میں آ جاتا ہے. بہترین نمونہ حسین ابن علی نے پیش کیا، ترک دنیا اور آخرت کا معیار کیا ہے. وہی حسین جو میں نے کل عرض کیا تھا نا، انی احب الصلاۃ، میں عاشق نماز ہوں، مجھے نماز سے محبت ہے. وہی حسین حج کو چھوڑ دیتے ہیں، وہی حسین حج کو چھوڑ دیتے ہیں. کاہے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ عبادت خدا اپنے مقام پر، حج نماز روزہ دعا تلاوت قرآن کی اپنے مقام پر. لیکن جب اسلام کے اوپر آج آ گیا ہے، اس وقت جو الہی ذمہ داری حسین کی ہے، اس وقت الہی ذمہ داری خانے خدا کے گرد طواف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت ذمہ داری تو حسین کی یہ ہے کہ اپنے لہو سے مٹتے ہوئے اسلام کو حیات ابدی عطا کر. لے کر کے حسین اپنے قافلے کو نکلتے ہیں. صرف حسین نے اپنی قربانی نہیں دی ہے اس بلا کو عالم اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام کو بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے، بلکہ حسین کے ساتھ جتنے ہیں، چاہے وہ اقربا ہیں، چاہے وہ اعزاء ہیں، چاہے حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے اصحاب و انصار ہیں، سب حسین کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں، سب حسین کی شکل میں ڈھلے نظر آتے ہیں. جو حسین کا کردار ہے وہی عباس کا کردار ہے، وہی علی اکبر کا کردار ہے، وہی زہیر کا کردار ہے، وہی سعید کا کردار ہے، وہی حور کا حق کا کردار ہے. مردوں ہی میں نہیں، وہی عورتوں کا کردار ہے. حسین ابن علی جب میدان کربلا میں آتے ہیں تو کس شان سے حسین ابن علی آئے ہیں. آنے کے بعد بقائے اسلام کے لیے، حکم خدا کی تعمیل کے لیے کسی قربانی سے حسین کو جو ہے گریز نہیں. اگر جوان بیٹے کے سینے کی ضرورت پڑ جائے گی اسے بھی پیش کر دیں گے، اگر ننھے شیرخوار کے گلے کی ضرورت پڑے گی حسین کو اسے بھی پیش کرنے سے انکار نہیں ہے، اور اگر بہن زینب کی چادر کی ضرورت پڑ جائے گی. عزیزوں، ساری قربانیاں کربلا کی ایک طرف، ساری قربانیاں کربلا کی ایک طرف، اور زینب کی اسیری ایک طرف. سیلانیوں کا برہنہ سر کوف و شام کے بازار میں پھرایا جانا ایک طرف ہے. چنانچہ روایتیں بتاتی ہیں، جب امام زین العابدین علیہ السلام قید شام سے چھوٹ کر کے مدینے آئے ہیں، تقریباً 34-35 سال جو امام زندہ رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اپنے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، ہر وقت محو عذاب ہیں. امام منحال آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا کب تک روئیے گا، مولا کب تک ماتم کیجیے گا، مولا کب تک آنسو بہائیے گا. امام تڑپ گئے، کہا میں حال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف ان کی نگاہوں سے موجھل ہو گیا تھا. قرآن گواہ ہے یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. آئے ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہندے کر دیے، اور تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا. منحال نے کہا مولا ارے شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے لیے باعث امتحان ہے. امام نے کہا منحال تم نے سچ کہا، لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر اوپر شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث؟ اجرکم اللہ. تو زینب کی اسیری، سیدانیوں کے سر سے چادروں کا چھن جانا علی اکبر کی شہادت سے بڑھ کر کے ہے، علی اصغر کی شہادت سے بڑھ کر کے ہے. امام حسین، امام سجاد، جناب علی اکبر کی شہادت پر صبر کرنے کو تو تیار ہیں، علی اصغر کی شہادت کو بلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن زینب کی اسیری ماں بہنوں کے سر سے چادر کا چھننا
ना ये वो मुसीबत है जो सैयद सज्जाद को तलबाए रखती है, मगर हुसैन इब्ने अली जो अपने काफिले को लेकर के आते हैं इस कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि सिर्फ सर कटा देने से दीन न बचेगा, अली अकबर की शहादत सिर्फ दीन को न बचा सकेगी, हत्ता अली अकबर का नन्हा सा गला भी दीन को सहारा न बचा सकेगा। जब तक मैदान को पहचाने वाली ज़ैनब साथ में न हो, जब तक कि मैदान को पहचाने वाली सकीना साथ में न हो, लिहाजा हुसैन सबको लेकर के आए। अगर ज़ैनब कर्बला में न होती, अगर सकीना कर्बला में न होती, अगर उम्मे कुलसूम कर्बला में न होती, तो बनी उमैया ने जो ये जो है प्रोपेगेंडा कर रखा था उसके बाद किसी को पता भी न चलता कि कर्बला में कौन मारा गया। गफलत का आलम यह था, दूर दराज के शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, कूफा जो कर्बला से जो है मिला हुआ शहर है, 70-75 किलोमीटर का कुल फासला है। रवायतें बताती है कि कूफे वालों को भी पता नहीं था कर्बला में कौन मारा गया और क्यों मारा गया। बस एक रवायत के बाद इस तमाम रावी कहता है, मैं हंस करके पलट रहा था, रास्ते में मेरे बदन के रास्ते में कूफा पड़ता था, मैं मुहर्रम की 12 तारीख को कूफा पहुंचा हूँ। जब मैं कूफा पहुंचा हूँ तो मैंने क्या देखा, लोग नए नए कपड़े पहने हुए हैं, लोगों के चेहरे से खुशी के आसार नुमाया है, दुकानें बंद है, ईद जैसा समा है। मैं कूफे के हालात से वाकिफ था, मैं जानता था कि 12 मुहर्रम उनके यहाँ कोई ईद का दिन नहीं है, कोई जश्न का मौका नहीं है। आखिर मैंने कूफे के एक बाशिंदे से पूछ ही लिया, भाई ये बताओ ये जश्न कैसा है, ये खुशी कैसी है, ये नए नए कपड़े क्यों पहने हो, ये ईद जैसा समा क्यों है। उसने कहा, क्या तुम कूफे के रहने वाले नहीं हो? मैंने कहा, नहीं मैं कूफे का बाशिंदा नहीं हूँ, गुजर रहा था मैं तो यहाँ। कहा, करबला में अलैहिस्सलाम खातम बदहन एक खारजी मारा गया है, राकिबे दोषे रसूल नहीं, फातिमा का दिल नहीं, अली का करार नहीं, एक खारजी मारा गया है, उसके अहले बैत असीर करके लाए जा रहे हैं, हम लोग उसी के तमाशे की तैयारियां कर रहे हैं। रावी कहता है, मैं रुक गया कि देखो कौन लोग हैं, ये कहां के खारजी हैं, किस कौन कबीले से इनका ताल्लुक है। मैं एक गोशे में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद आवाज उठी, काफिला शहर में दाखिल हो रहा है। तब तो मैंने सर उठा के देखा तो क्या देखा, काफिला इस शान से आ रहा है, आगे आगे कुछ नैजे हैं, नैजों के ऊपर कुछ सर बुलंद है। जब मैंने चेहरों को देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे चेहरे से कितना नूर बरस रहा है, कि कैसे खारजी हैं जिनके चेहरे इतने नूरानी हैं। मैं अभी इसी इस्तराब की आलम में था, इसी हैरत और इस्तेजाब की आलम में था, अचानक मैंने क्या देखा, कुछ ऊंट शहर में दाखिल हो रहे हैं, ऊंट के ऊपर कुछ बीवियां बैठी हैं जिनके सर पे रजा नहीं है, हाथों में रस्सियां बंधी हुई है, अरे बात बीवियों के आवाज़ में कुछ बच्चे थे, बच्चे इतने भूखे थे, चेहरे दर्द हो गए थे, इतने प्यासे थे कि हाथ होठों पे पपड़ियां जम गई थी, कूफे की आंखों से ये मंजर देखा न गया, कहीं घर में गई सत्ते का खुरमा लाई लाके बच्चों को देना चाहा, मैंने देखा असीरों में से एक बीवी उठी, एक कूफे वालियों محمد والے محمد کا ہمارے مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔
پڑھنے والے خطے میں اہل بیت اطہار کی ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس طرح سے اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات کا افضل بننے کی صلاحیت دی ہے ہم اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا سکے. پڑھنے والے ہمیں توفیق عنایت فرما امام صادق نے جو اپنے چاہنے والوں کی صفات بیان کی ہے ہماری نگاہوں میں بھی آخرت کی عظیم ہو کہ ہم آخرت کا سودا کسی چیز کے بدلے میں نہ کر سکے. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو لاولد ہیں انہیں صالح اولاد عنایت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ عالم اسلام کے اوپر اس پر بہت سارے جو ہے مسائل اور شدائد ہیں ان کی حفاظت فرما, اسلام دشمنوں کو نیست و نابود فرما, مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. امام زمانہ کا جب ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره. درخواست ہے سورہ فاتحہ کی بدرمیز حسن زہیر ابن زہیر الحسن فاطمہ زہرا بنت سید علی مردان ام لیلہ بیبی وحید الحسن سید غلام مہدی احسانی بیگم ام لیلہ بیگم ظہیر الحسن رحمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.